آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ के बुलेटिन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादों से घिरे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की करी घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने की लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारियों से हिंसा की धमकी की कड़ी निंदा। विक्टोरिया में लगभग सभी शेष कोविड-19 प्रतिबंध अब से समाप्त। और खेल में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कप्तान टिम पेन ने सेक्सटिंग स्कैंडल पर दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने कल की गई अपनी टिप्पणी का बचाव किया, जहां उन्होंने कहा था कि विक्टोरिया में टीकाकरण विरोधी प्रदर्शनकारियों की निराशा को वे समझ सकते हैं। क्वींसलैंड के डिप्टी प्रीमियर श्री स्टीवन माइल्स और लेबर फ्रंट बेंचर श्री एड ह्यूजिक ने प्रधानमंत्री स्कॉट पर आरोप लगाया है कि श्री मॉरिसन अगले साल के फेडरल चुनाव से पहले दक्षिणपंथी चरमपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री मॉरिसन ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों से हिंसा के किसी भी खतरे की निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को अब पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि टीकाकरण दर बढ़ रही है।
I have sympathy for Australians who've had a gutful of governments telling them what to do over the last 2 years. And I think they have been very clear in keeping their side of the deal. And they've kept their side of the deal. It's now time for them to be able to step forward with their lives and for governments to step back out of their lives. That's what Liberals believe. That's what Nationals believe.
लेकिन विपक्ष के नेता एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों तरफ से फायदा हो।
The Prime Minister needs to clearly and unequivocally condemn the threats of violence that have been made by demonstrators. They have no place in Australian political life. They have no place in the context whereby a range of ministers who I've spoken to and premiers have had to shut offices, have had to have security upgraded.
उधर नॉर्दर्न टेरिटरी में 2 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं, जिससे अब कैथरीन में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 25 हो गई है। संक्रमित मामलों में एक 33 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। दूसरी 59 वर्षीय स्वदेशी महिला है, जिसका मामला सकारात्मक मामले वाले एक परिवार से जुड़ा है। मुख्यमंत्री माइकल गनर का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारी अभी भी पहले क्लस्टर और दूसरे के बीच की कड़ी पर छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं।
There is a very real possibility that there are people in Katherine who have COVID and either don't know it or don't want to know it. And those people have then spread it to the community. If that is what's actually happened, best case scenario, we got lucky, it hasn't spread any further than what we have caught so far. Worst case scenario, this has been silently spreading for a week and we are a day or two away from discovering a disaster. The only way to get to the bottom of this is by testing the hell out of the Katherine community.
उधर विक्टोरिया में लगभग सभी शेष कोविड-19 प्रतिबंधों को अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 12 साल से अधिक आयु की 90% आबादी को टीके की डबल खुराक मिल चुकी है। अब से पूर्ण टीकाकृत विक्टोरियन क्लबों में नृत्य कर सकते हैं। घर पर आने वाले की सीमा के साथ साथ कैफे, बार और रेस्टोरेंट में भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और आतिथ्य ग्राहकों के लिए मास्क की आवश्यकता नहीं होगी। प्रीमियर डैनियल एंड्रूस का कहना है कि राज्य के मजबूत कोविड-19 टीकाकरण की वजह से प्रतिबंधों में ढील दी गई है। विक्टोरिया के प्रतिबंध अब न्यू साउथ वेल्स की तुलना में कम हैं, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में रेस्टोरेंट, आतिथ्य स्थलों, अंतिम संस्कार और शादियों के लिए घनत्व सीमाएं अभी भी लागू हैं। विक्टोरिया ने आज 1,273 स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले और 8 मृत्यु दर्ज की। न्यू साउथ वेल्स में कुछ स्थानों में QR कोड साइन इन को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। कस्टमर सर्विस मिनिस्टर श्री विक्टर डोमिनेलो का कहना है कि राज्य में कोविड 19 मामलों की संख्या में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। राज्य में पूर्ण टीकाकरण दर बढ़कर 91.5% हो गई है। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 216 नए कोरोना वायरस मामले और 3 मौतें दर्ज की। अब भारत की ताज़ा खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने उन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है जो पिछले 1 साल से अधिक समय से विवादों में घिरे थे। इन कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से भारत के किसान आंदोलन कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अच्छी नीयत से किसानों के कल्याण के लिए ये कानून लेकर आई थी, लेकिन विरोध के चलते देश हित को ध्यान रखते हुए उन्हें वापस लेने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया संसद के सत्र में ही की जाएगी जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। उन्होंने किसानों को अपने अपने घर वापस जाने का आग्रह किया। भारत में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,919 नए कोविड-19 मामले और 470 मौतें दर्ज की गईं, जिससे भारत की रिकवरी दर अब 98.28% बताया जा रहा है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या तकरीबन 1,28,762 बताई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के हिसाब से भारत में लगभग 82% योग्य आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिल गई है, जबकि 41% से अधिक को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। अब मुद्रा दर की जानकारी में, आज के दिन अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 73 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.96 रुपये है। अब खेल समाचार में, आज यानी कि शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में होने वाले दूसरे T20 मैच में उतरेगी। टीम इंडिया पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। कोच राहुल द्राविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के साथ बुधवार को जयपुर में न्यूजीलैंड को पहले T20 में 5 विकेट से हराया था। उधर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान श्री टिम पेन ने आज होबार्ट में कप्तानी के पद से इस्तीफा की घोषणा की। श्री पेन पर 2017 में एक महिला सहकर्मी को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा था। इस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इंटेग्रिटी यूनिट द्वारा जांच की जा चुकी है और श्री पेन का कहना है कि उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज शुरू होने के कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने यह निर्णय तब लिया जब उन्हें पता चला कि सहकर्मी के साथ एक निजी संदेश के आदान प्रदान को जनता के सामने पेश किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेन ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए प्रतिबद्ध सदस्य बने रहेंगे और एशेज की सफल यात्रा की आशा करते हैं। अपने पद को छोड़ते हुए उन्होंने अपने क्रिकेट प्रशंसकों से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे गहरा खेद है कि मेरे पिछले व्यवहार ने एशेज से पहले हमारे खेल को प्रभावित किया है। प्रशंसकों और पूरे क्रिकेट समुदाय को हुई निराशा के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ।
I'm grateful for the support of my teammates and proud of what we've been able to achieve together. To them, I ask for their understanding and forgiveness. To Australian cricket fans, I'm deeply sorry that my past behaviour has impacted our game on the eve of the Ashes. For the disappointment I have caused to fans and the entire cricket community, I apologise.
और अब देखते हैं कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में धूप बनी रहेगी, न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 28 डिग्री। एडलेड में बारिश होने की आशंका, न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 18। मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम 10 और अधिकतम 18 डिग्री। कैनबरा में बरसात होने की संभावना और न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री। सिडनी में भी बरसात रहेगी, न्यूनतम 17 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी, न्यूनतम 19 और अधिकतम 31 डिग्री। उधर डार्विन में एक दो बौछार होने की आशंका, न्यूनतम 27 और अधिकतम 35 डिग्री। इंडिया भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप रहेगी, न्यूनतम 14 और अधिकतम तापमान होगा 26 डिग्री। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं, धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।